नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयामुदीरये नश प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्महिष्यांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतोर्पंगुर मा मंदवतेर्गतिमत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदनमोहनो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमृतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान का द्विज पत्नियों का उद्धार या ब्राह्मणों का अहंकार का दमन उनका, और दूसरा है इंद्र का अहंकार का दमन। इस प्रकार भगवान करते हैं और हमारे हृदय में कौन सी प्रकार के अनर्थ को नाश करते हैं। ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का यह अहंकार, ये बहुत गहरा अहंकार है। यानी वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से हम वर्णाश्रम धर्म के सर्वश्रेष्ठ है, समाज के सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब मेरे नीचे वर्ग के हैं। जन्म से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है इसका दमन करते भगवान। कैसे करते हैं? ये ब्राह्मणों की स्टोरी के द्वारा। अभी आपको मालूम है कि भगवान 6-7 साल के हो गए, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, अभी 7 साल सातवें साल में पहुंच रहे। उस समय उन्होंने ये चीरहरण का जो लीला है, चीरघाट जहां भगवान ने गोपियों का वस्त्रों को हरण किया था, वो लीला समाप्त हुआ। वो लीला जैसे समाप्त हुआ उस समय केवल भगवान ही थे और बाकी सब गोपियां थी। लेकिन ये लीला पता लग गया कि सारे ग्वाल बालों को भगवान ने इस प्रकार किया करके, जैसे पता लगा कि सभी लोग चर्चा करने लगे उसके बारे में कि भगवान ने किस प्रकार गोपियों का वस्त्रों को हरण किया और गोपियां उनको प्रार्थना करने लगी, तो ये बात सुन के जितने भी ग्वाल बाल थे सब लोग जोक कर रहे थे, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, ऐसा ऐसा बात कर रहे थे अपने आप में। बात करते करते इतना हंसी मजाक में वो जंगलों में बहुत दूर तक चले गए थे, बातें करते करते गए, और ऐसा भी बोला जाता है कि उनका बहुत देर हो गया और भूख लगने लगा, भूख का भी पता नहीं लगा कृष्ण की कथा में। और एक समय इतना भूख सताने लगा उनको तो तुरंत वो भगवान को बोलने लगे, कृष्ण और बलराम के पास आके बोलने लगे कि आप तो बहुत बलवान हो, आप अपने बल के द्वारा बहुत सारे असुरों को आपने वध किया, लेकिन ये जो भूख है वो भी प्रकार का असुर है, ये भूख नामक असुर है, ये हमको अभी सता रहा है, उनको आप वध कीजिए, आप जरा जाके हमको कुछ भूख मिटाने के लिए कुछ रास्ता बताइए। तो कृष्ण और बलराम को थोड़ा सा दया आई इन सब बच्चों के प्रति, इनके जितने ग्वाल बाल थे, तो इन्होंने कहा कि नजदीक में ही एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, कृष्ण ने कहा है बात को, नजदीक में यज्ञ हो रहा है, उधर बहुत सारे ब्राह्मण हवन कर रहे, यज्ञ की विधि को पालन कर रहे, और उनके पास जाओ, उनके पास जाके पूछो कि बलराम जी को भूख लगा है और आपसे निवेदन करते हैं कि उनसे भीख मांगो, उनके उनसे बलराम जी को भूख लगा है, बलराम जी का नाम लेके उनसे कुछ भीख लेके आना, क्योंकि कृष्ण का यह कहना यह था कि अगर मेरा नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लिया जाए वो नहीं देंगे, वैसे तो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, ब्राह्मणों से दान लिया नहीं जाता है, क्योंकि ऊंचे वर्ग के लोगों को दान दिया जाता है, तो इधर तो हम तो क्षत्रिय है, या बलराम तो क्षत्रिय है और कृष्ण कौन है, वैश्य है, तो कृष्ण अपने आप को कहते हैं कि मैं तो वैश्य परिवार में जन्मा हूं, तो बाकी सब लोग इस प्रकार जानते हैं मैं यशोदा का पुत्र हूं, यशोदा जो है वैश्य परिवार के है, और बलराम को प्रसिद्ध थे सारे ब्रज में कि वो रोहिणी के पुत्र है, रोहिणी के पुत्र, रोहिणी जो है वो वसुदेव की पत्नी होने के नाते बलराम जो क्षत्रिय के रूप में जानते थे। तो कृष्ण ने कहा अगर मेरा नाम लोगे तो ब्राह्मण लोगे, वो वैश्य को देंगे नहीं दान, वैश्य को तो हो ही नहीं सकता, दान तो मिलेगा ही नहीं आपको, तो आप जाके अगर बोलोगे बलराम जी का नाम, हो सकता है शायद मिल सकता है बलराम जी को, क्यों वैश्य से ऊंचा वर्ग है क्षत्रिय, तो इसलिए बलराम जी के नाम पे मिल सकता है। दूसरा बात यह भी है कि ब्राह्मण सोचते होंगे कि अच्छा वैश्य ने पूछा है, वो क्षत्रिय ने पूछा है, एक कर के रूप में तो कम से कम दे दे, तो किसी तरह की सबको मिल जाएगा, आप जाइए। तो सारे इतने भी गए, ग्वाल बाल सब गए, जाके उधर बोलने लगे कि दोनों को नाम लिए, उधर कृष्ण बलराम दोनों भूखे हैं, आप हमको भी भूख लग रहा है, आप जरा मुझे हमको दान दीजिए, क्योंकि आप बहुत निपुण हो यज्ञ विधि को संपन्न करने में, तो हम जानते हैं आप यज्ञ कर रहे हैं करके, लेकिन अभी ऐसा समय आया यज्ञ का कि आप दे सकते हो बिना अर्पण, वो यज्ञ का कुछ विधि हो जाता है, कुछ ऐसा वो यज्ञ चल रहा था, वो एनिमल सैक्रिफाइस चल रहा था, गोमेद या कोई ऐसा कुछ यज्ञ चल रहा था, उसकी वजह से वो अग्नि की वो अवस्था तक पहुंच गई है कि तब आप अभी दे सकते हो, यानी अग्नि की एक अवस्था तक आप दे नहीं सकते क्योंकि अभी तक वो भोग नहीं लगा है, भोग लगने के बाद आप दे सकते हो। तो ग्वाल बालों ने जैसे ब्राह्मणों से इस प्रकार निवेदन प्रस्तुत किया, श्री स्वामी पाद कहते हैं कि ग्वाल बालों ने भूल गया कि अर्जुन का, कृष्ण का जो आदेश था उनका कि बलराम जी का नाम लेना, लेकिन कृष्ण का नाम भी ले लिया, इसलिए ब्राह्मणों ने जरा ख्याल नहीं किया, कुछ जरा बात ही नहीं सुना उनके बारे में, उनका वो अपने अपने कार्य में व्यस्त थे, जैसे ऐसा अपने कार्य में व्यस्त थे, कृष्ण और बलराम की इतना नाम लेने पर भी वो लोग दिए नहीं, वो इतना व्यस्त थे अपने यज्ञ में, वो लोग पहचान नहीं पाए कि यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, यज्ञ का वो वास्तविक भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ही यज्ञ है, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता है, ये ब्राह्मण लोग इसको पहचान नहीं पाए, वो स्वाहा 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 कर रहे थे लेकिन उनको मालूम नहीं जो जिसको स्वाहा कर रहे थे वही स्वयं आके उनके सामने कुछ ही दूर में नजदीक उपस्थित थे और मांग रहे। तो ये ब्राह्मणों का इस प्रकार की यज्ञ की विधि विधान में ज्यादा आसक्ति था और यज्ञ का पर्पस उद्देश्य वो कौन है मालूम नहीं पड़ रहा था। कृष्ण सारे वेदों का उद्देश्य है, वेदों में आसक्ति है, लेकिन वेदों का मुख्य उद्देश्य, वेदों का जो लक्ष्य है, केंद्र है, केंद्र बिंदु कृष्ण के प्रति उनका आसक्ति, उनका ध्यान नहीं गया। तो इसलिए ग्वाल बाल वापस आ गए। वापस आके कृष्ण को इस बात को कहा तो कृष्ण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप जाओ जाके यज्ञ द्विज पत्नियों को, इनकी पत्नियां मेरे बहुत अच्छे भक्त है, उनके पास जाओ, उनके पास जाके कहो कि कृष्ण बलराम खड़े हैं और वो भूखे हैं, आप उनको कुछ अन्न चाहिए, कुछ खाने के लिए भूख लग रहा है, भूख मिटाने के लिए अन्न चाहिए। ग्वाल बाल फिर गए जाके द्विज पत्नियां जहां उधर पकवान बना रही थी, क्योंकि यज्ञ के लिए, हवन के लिए, भोग लगाने के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सबके लिए पकवान बना रही थी, बनाए ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बना के खत्म हो गया था। तो जैसे ये लोगों ने जाके इस प्रकार कहा, जैसे कृष्ण का नाम सुना, वो लोगों ने, कृष्ण है नजदीक में, उनको भूख लगा है, तो जैसे उन्होंने सुना सारे जितनी सामग्रियां थी जो बनाए थे सब कुछ बांध के वो कृष्ण के पास आ गए और कृष्ण को अर्पण किए और कृष्ण सारे गाल बाल बहुत प्रसन्नता से सबको ग्रहण किए। तो उस समय कृष्ण कहते हैं कि आप तो आए हो, अभी हम तो संतुष्ट हो गए, आपने हमको दान दे दिया, आप वापस जा सकते हो। तो द्विजपतियों ने कहा कि एक बार आपका शरण में आने के बाद वापस जाना नहीं होता है, हम किसी भी हालत में हम वापस जाने वाले नहीं हैं। तब कृष्ण ने कहा कि आपका कर्तव्य बनता है, आप ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, आपको जाके घर संभालना है और साथ साथ में मेरा भक्ति भी करो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ में रहने से ही भक्ति होता है, मेरे नामों का कीर्तन करने से ही भक्ति होता है, मेरा गुणगान करने से ही भक्ति होता है, मेरे कथा का श्रवण करने से ही भक्ति होता है, मेरे साथ में रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ये भक्ति के अंगों को पालन करना महत्वपूर्ण है, आप जाके भक्ति कीजिए। तो इधर कृष्ण द्विज पत्नियों को क्यों तिरस्कार किया, तिरस्कार तो नहीं, एक बल्कि एक तरीके से उन्होंने बोला कि नहीं आप जाइए वापस, बोल रहे थे कि जाइए और साथ साथ उनका इच्छा नहीं था कि वो जाए, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन उधर ही इसी समय उसी प्रकार का घटना हुआ था गोपियों के साथ, जब उन्होंने रात को बांसुरी बजाया था कृष्ण, तब सारे गोपियां भाग के आई, उसी परिस्थिति में ये भी आए ब्राह्मण की पत्नियां। गोपियां तो ठीक है, वो भी नीचे वर्ग के, वो भी भाग के आ सकती है, लेकिन ब्राह्मण की पत्नियां, विवाहित पत्नियां, वो समाज के चीजों को उल्लंघन करते, वो भी जब उनके पति यज्ञ संपन्न कर रहे हो, ऐसा बोला जाता है कि पत्नी के बिना यज्ञ का संपन्नता पूर्ण नहीं हो पाता है। भगवान रामचंद्र का भी हम देखते हैं कि वो सोने की सीता को बनाना पड़ा उनको और उनके साथ यज्ञ करना पड़ा और विधि को करना पड़ा, तो वो आधा अधूरा यज्ञ छोड़ के यज्ञ के लिए अर्पण किए गए उनके पतियों के लिए बनाया जो खाद्य पदार्थ है, वो आहार है, वो सब लेके कृष्ण को अर्पण कर दी, इतनी शरणागति है। तो गोपियां भी इसी प्रकार की शरणागति थी, तो गोपियां भी अपने परिवार सबको त्याग करके कृष्ण की शरण में जब आई तो कृष्ण ने कहा गोपियों को, अरे क्या हो गया आपको, तो क्यों आए हो? तो गोपियां ने कहने लगी, आप तो बांसुरी बजाए, आपका बांसुरी का आवाज सुन के आकृष्ट होके आए, अस्तित्व में आपने बांसुरी क्यों बजाए, हमको बुलाने के लिए, पुकारने के लिए बजाए? तो कृष्ण ने बोला, मैं ऐसे ही बजा रहा हूं। तो ये गोपियों ने कहा कि बस अभी मुझे हमको वापस जाना नहीं है। तो कृष्ण ने फिर वापस गोपियों को कहा कि आप जाओ, लेकिन जब कृष्ण ने गोपियों को कहा वापस जाओ, अस्तित्व में अंदर मन था कृष्ण का कि नहीं जाए, लेकिन फिर भी बोल रहे थे तो आप जाओ घर को देखभाल करो, लेकिन उस समय गोपियां गए नहीं। और इतना कहने के बाद भी, कृष्ण का कहने के बाद भी गोपियां गए नहीं, उधर बड़ा सा रास हुआ जब कृष्ण ने गोपियों को स्वीकार किया। लेकिन इधर कृष्ण भले ही द्विजपत्नियों को स्वीकार करना चाहते हैं उनकी माधुरी में, लेकिन फिर भी सामाजिक बाधा थी। सामाजिक बाधा यह थी कि समाज के हिसाब से ऐसा है कि ऊंचे वर्ग का पुरुष नीचे वर्ग की स्त्रियों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन नीचे वर्ग का जो पुरुष है वो ऊंचे वर्ग के स्त्रियों को स्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया पुरुष है वो ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकता, वैश्य और शुद्ध से विवाह कर सकता है, वैश्य और स्त्री स्त्रियों से विवाह कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा है कि ये जितने भी स्त्रियां इधर वो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, तो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ स्त्रियां हैं, तो कृष्ण क्या है वो एक वैश्य परिवार में जन्म। तो कृष्ण सोचने लगे अगर मैं उनको अपने साथ रख लूं तो वैसे तो मेरा नाम खराब है लेकिन फिर भी और बर्बाद हो जाएगा मेरा नाम कि तो वैसे एक मान्यता कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि चाहे कहीं भी कुछ भी कोई भी स्थान में कितना भी व्यक्ति भक्ति कर ले, कितना भी शरणागति क्यों ना हो, जब तक गोपी के कोख में जन्म नहीं लिया जाता है तब तक कृष्ण पूर्ण तरीके से माधुरी में स्वीकार नहीं करेंगे। ये सारे जगत को शिक्षा दे रहे, गोपियों का जो ऊंचा स्थान है, व्रज गोपियों का कोख से जन्म लेना, उनकी गर्भ से जन्म लेना, गोपकुल में जन्म लेना, ये महत्ता है। जैसे गोप्या यदि कृतागसी धाम थावद, उस श्लोक में गोपी शब्द जो आया है ये क्यों आया है उसके ऊपर व्याख्या हम सुन रहे थे, इसलिए ज्यादा कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि ये गोपी शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यशोदा मई और रोहिणी ये दोनों का एक ही बराबर का एक ही प्रकार का प्रेम था कृष्ण के प्रति। लेकिन यशोदा मई का खासियत ये है कि वो गोपी कुल में जन्म ली, इसलिए वो गोप्या गोपी शब्द का महत्व है उधर। रोहिणी और यशोदा दोनों का प्रेम एक ही जैसा था कृष्ण के प्रति, एक ही जैसा प्रेम था, लेकिन फिर भी यशोदा मई क्योंकि गोपकुल में उनका जन्म हुआ, रोहिणी उनका जन्म जो है वो इसमें हुआ था क्षत्रिय परिवार में हुआ था, गोपकुल में नहीं हुआ था, इसलिए वो सौभाग्य रोहिणी को प्राप्त नहीं हुआ जो यशोदामय को प्राप्त हुआ। भले ही कृष्ण एक ही जैसा देखभाल देखते तो रोहिणी और यशोदामय को, उनका दोनों में कोई अंतर ही था नहीं, प्रेम में वात्सल्य में विशुद्ध वात्सल्य था दोनों के प्रति, लेकिन फिर भी ये जन्म भी एक महत्व रखता है। तो कृष्ण इधर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखा रहे सारे जगत को, भले ही ये वर्णाश्रम धर्म का जन्म जो है वो भक्ति में मायने नहीं रखता है, वो कोई भी कुल में व्यक्ति जन्म ले सकता है फिर भी भक्ति करता है तो वो एक ही स्थान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से देखा जाए ये गोप कुल में जन्म लेना कृष्ण जो सोचते हैं बहुत महत्व है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को गोलोक वृंदावन धाम जाना है उनको सीधा इस जन्म के बाद तुरंत नहीं जा सकता कोई। अगर सच में कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम भी क्यों ना प्राप्त किया हो, कृष्ण प्रेम अगर इस जन्म में प्राप्त करने के बाद तुरंत इस जन्म के अपने शरीर को त्याग करते भगवत धाम नहीं जा सकता, भगवत धाम मतलब गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकता, वैकुंठ जरूर जा सकता है लेकिन गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए ऐसा कहा जाता है व्रत भागवतम वर्णन है या तत्व संदर्भ में वर्णन है, अलग अलग संदर्भों में भक्ति संदर्भ प्रीति संदर्भ में वर्णन है कि उस जीव को कोई और भौतिक जगत में कोई और ब्रह्मांड में जहां कृष्ण लीलाएं करते हैं उन लीलाओं में गोपी के गर्भ से जब जन्म लेते हैं और उस कृष्ण लीलाओं में रास में भाग लेने का मौका मिलता है तब कृष्ण उनको वापस गोलोक वृंदावन धाम लेके जाते हैं उस उधर जन्म लेने के बाद। तो ये गोपी कुल में जन्म लेने का यह सौभाग्य गोपियों को प्राप्त हुआ, इसलिए कृष्ण ने क्या किया गोपियों को स्वीकार किया जब उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने परिवार वालों को सबको त्याग करके आए। लेकिन जब इधर द्विज पत्नियों के साथ इस प्रकार वही उसी प्रकार के द्विज पत्नियां भी अपनी पतियों को त्याग करके इतना हद तक कि पतियों को खाना वाना बनाए थे, वो जो पतियों के बनाए थे वो खाना भी लेके आ गए, तो ऐसा स्थिति को देख के श्री कृष्ण ने कहा नहीं अभी आप मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, एक तो आपका योग्यता नहीं है क्योंकि गोपी कुल में जन्म नहीं लिया आप, दूसरी बात यह है कि ये समाज तो स्वीकार करेगा नहीं इस बात को करके श्री कृष्ण ने उनको वापस भेज दिए। जब वापस श्री कृष्ण ने उनको भेज दिए तब ऐसा बोला जाता है कि सारे उनके जो पतियां हैं वो पतियां अपनी गलती को एहसास कर लिए, क्योंकि ये सब यज्ञ वगैरह खत्म होने के बाद अपनी पत्नियों की भक्ति की श्रेष्ठता देख के सारे उनकी पतियां हैं उनको प्रणाम करने लगे, प्रणाम करके बोलने लगे कि कितना बड़ा सौभाग्य, हमने क्या मूर्खता किया, हम स्वाहा स्वाहा कर रहे थे इधर मामा बहुत बड़े बड़े यज्ञों की विधि को संपन्न कर रहे थे लेकिन हमको इतना तक एहसास नहीं हुआ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे पास भीख मांगने के लिए आए तो ये हमने ये देखा ही नहीं करके वो पश्चाताप करने लगे भाई ये द्विज ये ब्राह्मण ब्राह्मण लोग। तो इससे इससे क्या पता लगता है, इस छोटा सा भगवान की जो लीला है, ये लीला के द्वारा ऊंच परिवार में जन्म लेने से जो अहंकार है वो हमारे भक्ति में कैसे रुकावट पहुंचाता है ये बात हमको मालूम पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ऊंच परिवार में जन्म लेने से बहुत बड़ा अहंकार होता है, वो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का। तो ब्राह्मण और वैष्णव इन दोनों के बीच में अंतर एक बहुत सुंदर व्याख्या है भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर द्वारा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक सुंदर लेक्चर दिए थे क्योंकि उस समय कुछ स्मार्थ ब्राह्मण थे, वो स्मार्थ ब्राह्मण दावा कर रहे थे कि एक जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वही गुरु बन सकता है, दूसरा जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वही अर्च वगैरह का पूजा कर सकता है। आप अगर देखेंगे स्मृति शास्त्र में भी यही इसी बात को कहा गया है, ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है, दूसरा ब्राह्मण ही अर्च वगैरह का पूजा कर सकता है। तब ये दावा को इसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत सारे विद्वान लोगों को निमंत्रण दिया गया था, कुछ वैष्णवों को भी निमंत्रण दिया गया था। तो भक्तिनाथ ठाकुर उस समय बहुत बीमार थे, उनको जाने को नहीं हो रहा था, तब वो सोच रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन स्मार्थ ब्राह्मणों के ऊपर आवाज उठा सके। तब भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एक लेख लिखा, लेख लिख के अपने पिताजी को सुनाया भक्तिनाथ ठाकुर को। भक्तिनाथ ठाकुर बहुत प्रसन्न होकर बोला कि आप जाओ उसको सुनाओ। ये बड़ा जब सम्मेलन हुआ था भक्तिसिद्धांत ठाकुर, बहुत सारे ब्राह्मण और बहुत लोग, बहुत बड़ा सम्मेलन था, हजारों लोग थे। उधर भक्तिसिद्धांत ठाकुर का बोलने का मौका आया तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर सबसे पहला शुरू किए कि ब्राह्मणों का गुणगान करते हुए, ब्राह्मण कितने महान हैं, साक्षात भगवान कहते हैं कि नमो ब्राह्मण्य देवाय, उनका प्रणाम मंत्र में कहा गया नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यताय च, नमो ब्राह्मण्य देव, ब्राह्मणों के देव है, ब्राह्मणों का हित देखते हैं। और भी अलग अलग जो प्रसंग है जहां ब्राह्मणों की शक्ति का वर्णन हुआ है, अगस्त मुनि का, उसका बहुत आगाज जो ब्राह्मणों का जो गुणगान हुआ है वेदों में वो सब कहने लगे। तब सारे ब्राह्मण जो है बहुत प्रसन्न होने लगे, बहुत हंसने लगे, बहुत अच्छा लग रहा था उनको सुनने के लिए, वाह ये हमारा गुणगान हो रहा है, हमारा गुणगान हो रहा है। तब ये सब करने के बाद तुरंत शुरू किए, अभी ब्राह्मण कौन है ब्राह्मणों का गुणगान किया, बाद में शुरू किए ब्राह्मण कौन है, जैसे ब्राह्मण कौन है ब्राह्मण की योग्यताओं का वर्णन करने लगे, थोड़ा लोगों को मुंह छोटा होने लगा क्योंकि वो जो ब्राह्मण के गुण होना चाहिए वो किसी में भी नहीं था जो बैठे थे। ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं वो ब्राह्मण हैं, और उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, ऐसे ऐसे उनका कार्य करना चाहिए, वो कम से कम सुबह जल्दी उठना चाहिए तो ये सब बातें जो भी ब्राह्मण के लक्षण होते हैं वो लक्षणों को वर्णन किए, थोड़ा सा लोगों को लगा अरे मैं तो हुई हूं। तब उन्होंने स्पष्ट रूप में दिखाया कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का पहचान जन्म से नहीं होता है बल्कि गुणों से होता है, घर के अलग अलग शास्त्रों की विधि से उन्होंने स्थापना किया। वो अभी किताब छपा भी है वो, उसका ब्राह्मणस एंड वैष्णवस करके, वो अंग्रेजी में है, वो किसी को पढ़ना चाहते पढ़ सकते, बहुत बहुत सुंदर किताब है, हमने पढ़ा पूरा। तो कहां कहां से कोटेशन है, मैं तो देख के हैरान हो गया, कहां कहां से कोटेशन, इधर से उधर से, वो तंत्र से, उधर से उधर से कोटेशन करते हुए सब स्थापित करते हुए, वो पूरा बुक केवल कोटेशन के ऊपर। तब वो सब करने के बाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि ब्राह्मण की गुण क्या है, और उसके बाद कहते हैं ब्राह्मण का पहचान गुणों से होता है बल्कि जन्म से नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि ब्राह्मण के तीन स्तरों के बारे में कहते हैं, वैष्णव कौन है, ब्राह्मण कौन है, उनको जानने के लिए उनको कंक्लूडिंग पार्ट में वो कहते हैं कि ब्राह्मण के तीन स्तर होते हुए सबसे पहला है द्विजा। द्विजा मतलब द्वि मतलब दूसरी बार, जा मतलब जन्म लेना, दूसरी बार जन्म लेने की लिया है उस व्यक्ति को ब्राह्मण बोला जाता है, द्विजा बोला जाता है, ब्राह्मण का पहला स्तर है। जैसे यज्ञोपवेता ये जो जनवर संस्कार होता है, ये तो जैसे उनको ये संस्कार होता है उपनयन संस्कार, उसके बाद वो वेदों का अध्ययन कर सकता है। ही कैन स्टार्ट स्टडिंग द वेद, क्योंकि जब तक वो जिज नहीं बनता है तब तो वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं होता है, केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है वेदों का अध्ययन करने का। तो इसलिए ये द्विजा, ये नहीं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का तुरंत वेदों का अध्ययन कर सकता है, जब तक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी ये जब तक ये जेनेवर संस्कार या उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक वेदों को पढ़ नहीं सकता, गायत्री को जप नहीं सकता। तो तब तक वेदों को अध्ययन करना शुरू करता है द्विजा होने के बाद, तब वेदों को जान लेता है, निपुण हो जाता है वेदों को पढ़ने में या उच्चारण करने में, वैदिक विधियों को पालन करने में, तब उसको विप्रा बोला जाता है। विप्रा मतलब एक्सपर्ट इन वेदस, निपुण हो गया। अभी वेदों को वो जानता ही नहीं बल्कि वो पढ़ाता भी है, यज्ञिक विधियों को कराता भी है, ये विप्र हो गया। जब वैदिक नियमों का पालन ही नहीं बल्कि सारे वेदों का जो लक्ष्य को जानता है, कौन है श्री कृष्ण, वेदेश्च सर्वे रहम वेद्यो, जो कृष्ण को जानता है और वैदिक नियमों को पालन वेदों का उद्देश्य को जानता है और कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ, वो वैष्णव है। सबसे पहला है द्विजा, बाद में विप्रा, तीसरा वैष्णव। यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कौन होते हैं? वैष्णव होते हैं। यानी कोई भी परिवार में जन्म लिया हो, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव बन गया, कृष्ण की सेवा करता है, ये समझना चाहिए कि वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में कहा गया कि वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से परे है, अगर कोई व्यक्ति द्विज है या विप्र है उससे भी परे है वैष्णव, वैष्णव फार सुपीरियर। तब शास्त्रों में पुराणों में अलग अलग कोटेशन को लेते हुए भक्तिवत्सल ठाकुर ये स्थापना करते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति भले ही ब्राह्मण के कार्यकलापों में बहुत निपुण है लेकिन फिर भी अगर कृष्ण को जानता नहीं है, वैष्णव नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु नौ स्याद वैष्णव स्वपाचो गुरु। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कहा गया है कि षटकर्म निपुणो विप्रो, षटकर्म निपुणो विप्रो मतलब ब्राह्मणों के षड या छह कर्म होते हैं उसमें बहुत निपुण होने पर भी, निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, विशारद है, विशारद मतलब एक्सपर्ट है, किसमें? मंत्रों में, तंत्रों में, जो बोलो उसमें एक्सपर्ट है, उच्चारण करने में, हर चीज में एक्सपर्ट है, मंत्र तंत्र विशारद। अवैष्णव, अगर वो वैष्णव नहीं है, गुरु नवस्यात, वो गुरु नहीं बन सकता। तो ये शास्त्रों को एक कोटेशन लेके हुए ब्राह्मणों के सामने प्रस्तुत किए कि गुरु वही व्यक्ति बन सकता जो वैष्णव, और साथ साथ में उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप में कहा कि अर्च वगैरह का पूजा के बारे में कालो शूद्र संभव, ये कलयुग में कोई भी किसी भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अस्तित्व में शूद्र ही है। कोई भी परिवार में जन्म लो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो या ब्राह्मण हो, कोई परिवार में जन्म लो, कोई भी जाति में जन्म लिया, वो शूद्र ही है। और वो शूद्र होने के नाते ये जो वैदिक नियम है, वैदिक प्रिंसिपल्स, वैदिक विधि है, वो लागू नहीं होता कलयुग में। द वैदिक प्रिंसिपल्स फेल इन द एज ऑफ कली। इसलिए भक्तिवत्सल ठाकुर ने स्थापना किया उस सम्मेलन में कि ये कलयुग में केवल एकमात्र विधि जो लागू होता है वो है अपने आप को ब्राह्मण बनाने का, वो है पंचरात्रिक विधि। द वैदिक विधि फेल्स, क्योंकि इस कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, तो ब्राह्मण है ही नहीं तो ब्राह्मणों ही वेद पढ़ सकते हैं, तो वेद फेल हो जाते हैं, वेद कलयुग के लिए लागू नहीं होता। वैदिक विधि, वैदिक संस्कार कलयुग के लिए नहीं है, केवल पंचरात्रिक संस्कार के द्वारा ही व्यक्ति ब्राह्मणत्व को स्वीकार कर सकता है। तो अगर किसी को ब्राह्मण बनना है तो ये पंचरात्रिक विधि को या पंचरात्रिक संस्कार के द्वारा, वैदिक संस्कार के द्वारा नहीं, पंचरात्रिक संस्कार के द्वारा ब्राह्मण बन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। तो पंचरात्रि संस्कार के द्वारा ब्राह्मण बन सकता है, और वो पंचरात्र जो है एक स्वपाच चंडाल को भी अगर गुरु के नियंत्रण में पंचरात्रिक नियमों को पालन करते हुए भक्ति को अनुशीलन करता है तो उसको ब्राह्मण दीक्षा दिया जा सकता है, या पंचरात्र के संस्कार के द्वारा वो ब्राह्मण बनाया जा सकता है। दीक्षा मतलब यही है, जिस प्रकार गन मेटल को गोल्ड बनाया जा सकता है, गन मेटल को क्या बोलेंगे, पीतल या ब्रास, ब्रास, ब्रास को पारसमणि का स्पर्श करने से वो, या लोहा जो है पारसमणि का स्पर्श करने से सोना बन जाता है। तो वैसे ही ये पंचरात्रिक दीक्षा ऐसी शक्तिशाली चीज है, वो एक चंडाल को भी ब्राह्मण बना सकता है। जो हमारी संस्था में जो ब्राह्मण दीक्षा होती है उसको पंचरात्रिक दीक्षा बोला जाता है, पंचरात्रिक संस्कार बोला जाता है, पंचरात्रिक संस्कार, पंचरात्र, ये पंचरात्रिक संस्कार है जिसके द्वारा हमको ये ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होता है। उसमें अयोग्य व्यक्ति भी योग्य हो जाता है डेटी वर्शिप करने के लिए, अक्षय विग्रह का पूजा करने के लिए। तो बक्सी ठाकुर ने जैसे इस बात को स्थापना किया तो बड़ा सा कोलाहल हो गया पूरा पंडाल में, इतना कोलाहल हो गया कि कुछ लोग तो ब्राह्मण तो गुस्से में चले गए और कुछ ब्राह्मण जो सरल थे वो जो है भक्तिनाथ ठाकुर की बात को मान गए, और बाकी जितना भी पब्लिक था वो भक्तिनाथ ठाकुर का ये प्रवचन सुनकर इतना प्रभावित हो गए, इतना प्रभावित हो गए, वो भक्तिनाथ ठाकुर का चरण कमल का स्पर्श करने के लिए, धूलि लेने के लिए सब लोग आगे आ रहे थे। और बड़ा पुलिस का बंदोबस्त था, वो लोग एक क्राउड को संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा हंडी मंगाया जिसके अंदर पानी है, बक्सीनाथ ठाकुर को पुलिस लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ के क्या उनका चरण को उस हंडी में डुबा दिया, डुबा के और सबको उनका चरणामृत बांटने लगे। तो इस प्रकार बक्सीनाथ ठाकुर ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को खंडन किया। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, अस्तित्व में कलयुग में जानना चाहिए, ब्राह्मण परिवार में वही व्यक्ति जन्म लेता है जो पिछले युगों में असुर था और कृष्ण ने वध नहीं किया। ये हमारा बड़ा दौर्भाग्य है। जिन असुरों को कृष्ण ने वध नहीं किया वो कलयुग में ब्राह्मण एक परिवार में जन्म लेते हैं, ऐसा कई शास्त्र में कहा है। तो इसलिए असलियत में कोई इसमें कोई अहंकार की बात तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि ये सत्य है, इट इज ट्रू। ऐसा देखा जाए सारा हमारे जो देश की बर्बादी है वो उन्हीं की वजह से हुआ है। आप कहीं भी जाओ, कोई भी राष्ट्र में जाओ, उस राष्ट्र का इतिहास का पढ़ाई पढ़ो, किस प्रकार ब्रिटिशर लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने इस देश को आक्रमण किया, वो राजा को गलत उपदेश देने वाला ब्राह्मण था एक, क्योंकि वो ब्राह्मण लालच में ब्रिटिशों का धन खाके राजा को गलत उपदेश दिए, उसके वजह से राजा ब्रिटिश सरकार को अपना राज्य समर्पित कर दिया। तो हर एक जगह एक ही व्यक्ति का ये ब्राह्मणों का ही हाथ है। तो जिस प्रकार बोला जाए ब्राह्मणों का हालत खासकर कलयुग में इस देश की बर्बादी में, वो उसका कोई वो पूरा बड़ा इतिहास लिखते गए, पूरा बड़ा एक पुराण लिख सकते हो कैसे कैसे ये लोगों ने पूरा ये जन को बर्बाद किया है। क्यों? क्योंकि लोभवश। ये लोभ बड़ा डेंजरस चीज है ब्राह्मण के लिए, वेरी डेंजरस। जिस समय ये लोभ आता है ब्राह्मण में, तो वो समझ लीजिए उस दिन वो खुद कोई बर्बाद नहीं करता बल्कि सारा समाज को बर्बाद करता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने कुंडीचा मंदिर का मार्जन किया, कुंडीचा मंदिर मार्जन करने के समय सबसे पहला उन्होंने सब भक्तों को बुलाया, बुला के क्या कहा, झाड़ू लेके झाड़ू मारो। तब उसके घास फूस जितने भी थे, जितना भी कचरा वगैरह था जो दिखाई पड़ता था सुल रूप ने, उन सबको साफ किया। साफ करने के बाद भक्तों से चाहिए अभी हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी नहीं हुआ, अभी और आओ देखो, बारीकी बारीकी जो डस्ट है उसको निकालो। और उसको निकालने के लिए क्या किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उदाहरण के रूप में उन्होंने क्या किया, अपना ही स्वयं का कपड़ा उतारे, ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ, अपने कपड़े से वो गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना शुरू किया। जो बारीकी बारीकी जो रेती है और धूल है वो ऐसे झाड़ू से नहीं जाता है, तो एकदम हल्का सा कपड़ा कपड़ा मारने से ही जाता है। तो उधर भक्तिचंदन सरस्वती ठाकुर उस श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपना कपड़ा निकाल के इस प्रकार दूसरी बार सफाई क्यों किया, पहला सफाई हो गया इसलिए किया, पहली सफाई में अपना हृदय में जो स्थूल रूप में
जो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, यानी जो मांस के प्रति, मांस खाना, नशा करना, इनके प्रति आसक्ति है, वो तो जल्दी छूट जाता है, वो तो साफ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता हरिनाम करने से। लेकिन ये जो सूक्ष्म वायु की जो धूल है उसको निकालने के लिए टाइम लगता है, और उसको निकालने के लिए स्वयं अपना कपड़ा निकालना पड़ेगा। यानी स्वयं कपड़ा निकालना, निकाल के करना मतलब क्या है, स्वयं अपना निजी डिटर्मिनेशन, अभी निजी दृढ़ता, निजी शक्ति को लगाना पड़ेगा। हरिनाम का झाड़ू से हम सब स्थूल इंद्रिय तृप्तियों की भावना को निकाल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हरिनाम जप करना शुरू करता है तो उसको मांस खाना छूट जाता है, सब छूट जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म अहंकार है, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मुझे पूजा करना चाहिए, सब लोग मुझे रिकग्निशन देना चाहिए, ये जो बातें हैं, ये तभी जाएगा जब हम खुद प्रयास कर लें इन सब चीजों को उखाड़ के फेंकने का। खास करके ये जो ब्राह्मणत्व की जो भावना है, इसके बारे में बक्सील भक्तिदास ठाकुर लिखते हैं, ये तभी जा सकता है व्यक्ति के, साधक के हृदय में से, जब ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो सेकेंड क्लीनिंग करते हैं उस बात को समझते हैं और निजी प्रयास करते हैं। टू गिव अस प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन, श्री चैतन्य महाप्रभु क्लीन द टेम्पल ट्वाइस, द सेकेंड क्लीनिंग वॉज मोर थरो, द आइडिया वॉज टू थ्रो अवे ऑल द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये एक लीला हुआ। और दूसरा है गोवर्धन लीला, प्रसिद्ध लीला, जहां इंद्र का अहंकार को वध किया गया था। तो गोवर्धन लीला में जैसे द्विज पत्नियों का लीला समाप्त हुआ, तो सारे जितने भी ब्राह्मण द्विज पत्नियां सब चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लेकर वापस वृंदावन की ओर आ रहे थे, तो दूर से देखा, असल में ये जो लीला स्थली है जहां द्विज पत्नियों का लीला हुआ था, ये उसके नजदीक में गोवर्धन है। तो दूर से देखा तो सारे ब्रजवासी जो है वो आ रहे, और उनके पिताजी नंद महाराज भी है, और बड़ा उत्सव जैसा हो रहा था। मैं देखा गोवर्धन के पास क्या हो रहा है भाई, तो उनके पिताजी के पास गया कृष्ण, जाके पूछने लगे, पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने सोचा कि बच्चा है, इसको क्या बताऊं, यज्ञ हो रहा है, विधि हो रहा है, हमको तो इंद्र का पूजा कर रहे हैं, सब चीजें क्या बताऊं। हाँ बेटा बस ऐसे ही है, हम कुछ हमारी परंपरा है, करना है कर रहे। तो फिर भी कृष्ण जो पिताजी के पास जाके पूछने लगे, अभी तुम मुझे बच्चा मत समझो, अभी मैं समझदार हो गया हूं, मैं जानना चाहता हूं आप क्या कर रहे हो इधर। तब पिताजी समझ गए कि ये कुछ समझना चाहते हैं, सीरियस बात है। तब समझाने लगे, बेटा हम तो वैश्य है तो हम बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं, अगर बारिश नहीं होता है तो फिर हमारा अन्न उत्पन्न नहीं होता है, घास उत्पन्न नहीं होता, जिसके से गाय वगैरह खा नहीं सकते कुछ, तो हमारा जीवन जो है बारिश के ऊपर आधारित है। तो बारिश देने वाले इंद्र है, और उनको यज्ञ करना, उनको उपासना करना, उनको कुछ अर्पण करना, उनको पूजा करना हमारा कर्तव्य बनता है, वैश्य का कर्तव्य बनता है, तो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं। कृष्ण ने तुरंत कहा अपने पिताजी से कि आप तो ये कर रहे हो, लेकिन ये इंद्र का कर्तव्य बनता है बारिश देना, इंद्र तो अपना काम कर रहा है, तो आप इंद्र को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने कर्मों की वजह से जो कर्म में आपको जो कर्मों में है आपका, वो जरूर आपको मिलने वाला है, और वो देने वाला इंद्र है, वो जरूर बारिश देना उनका काम है, वो कर रहे, तो आपको उनको पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इधर श्री कृष्ण कर्म मीमांसा सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, या कर्म मीमांसा सिद्धांत के अनुसार अपने पिताजी को समझा रहे कि इंद्र को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको अगर सच में पूजा करना ही है, किसको करना है, गोवर्धन को पूजा करना है, क्योंकि गोवर्धन वो इतना सुंदर घास देती है, हमारे लिए सारे गायों का रक्षा देती है, सारे गायों को खाद्य पदार्थ देती है, इसलिए अगर आप सब में सच में किसी को पूजा करना ही है तो आपको क्या करना है, आपको इंद्र को पूजा करना है। तो कृष्ण कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी डेमिगॉड फॉर टेम्पररी रिजल्ट्स, इवन द टेम्पररी रिजल्ट्स आर गारंटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान स्वयं देते हैं, तो इसलिए इंद्र एक माध्यम मात्र है, इंद्र को आपको पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, गोवर्धन को पूजा करो। तब श्री तब सारे नंद महाराज जितने भी ग्वाल उनके अनुचर थे सब लोग सोच चलेगा ठीक है ये बात सही है चलो गोवर्धन को पूजा करते। तो गोवर्धन को पूजा करने लगे तब इंद्र देखने लगे क्या हो गया, इधर जो पूजा की सामग्री उनके लिए इकट्ठा किया गया था वो सब सामग्री किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी गोवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख के उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने सोचा कि ये जो एक मूर्ख बालक बालिशम पंडित मानिनम, बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक कहते हैं उधर इंद्र कि बालिशम पंडित मानिनम वाचलम बालिशम पंडित मानिनम, ये जो बालिशम मतलब ये बालक मूर्ख बालक इनका बात सुन के ये लोग मेरा पूजा को त्याग करके गोवर्धन को पूजा कर रहे हैं, बालिशम मतलब बालक बोलते हैं। तो ये जब असुर लोग जब भगवान की निंदा करते हैं उस समय असुर लोग सोच रहे कि मैं भगवान की निंदा कर रहा हूं, लेकिन अस्तित्व में ये जो वचशक्ति है वचशक्ति की देवता सरस्वती कुछ और मतलब से बोलती है। इसलिए इन ऐसे श्लोक जहां असुर लोग भगवान की निंदा करते हैं उधर आचार्य लोग क्या करते हैं सारस अर्थ को देते हैं। सारस्वत अर्थ वो अर्थ है जो सरस्वती अर्थ ले रही है, असुर जो बोल रहा है वो कुछ और अर्थ से बोल रहा है, वही श्लोक का दूसरा अर्थ होता है जो सरस्वती स्वीकार कर रही है, क्योंकि सरस्वती भगवान की भक्ति करती है और उनको हमेशा गुणगान करती है, और सरस्वती की शक्ति के द्वारा ये असुर लोग कुछ शब्द बोल रहे हैं, यानी अगर उसका दूसरा मतलब नहीं होता तो सरस्वती भी सहयोग दे रही है असुरों को भगवान की निंदा करने में, तो सरस्वती ऐसी कभी नहीं कर सकती। जैसे ये भगवद्गीता में भी आता है जहां दुर्योधन कहते हैं कि मदर ते त्यक्तो जीविता नाना शस्त्र, ये जितने भी मेरे साथ जितने बहुत शूरवीर है इतने सारे शूरवीर है इतने शक्तिशाली है वो मदर ते त्यक्तो जीविता, मदर ते मतलब मेरे लिए वो सब जीवन त्याग करने के लिए तैयार है, पहले अध्याय में दुर्योधन कहते हैं। लेकिन सरस्वती उसी दुर्योधन के मुख से कुछ और मतलब से स्वीकार कर रही है, इसको बोलते हैं सरस्वत अर्थ। ये जो मदर ते त्यक्तो जीविता का दूसरा मतलब ये है कि मेरे वजह से सब लोग मरने वाले, ये है मेरे लिए सब मरने वाले हैं मरने के लिए तैयार है, मदर ते मतलब मेरे लिए, दूसरा मतलब है मेरे वजह से। ये मदर ते का दो मतलब हो सकता है, एक मेरे लिए दूसरा है मेरे वजह से। तो ये सरस्वत अर्थ इस प्रकार है। इसी प्रकार जब इंद्र ने कहा कृष्ण को बालिशम तुम बालक हो, तो जैसे बालक मतलब मूर्ख है इस प्रकार इंद्र ने मतलब लिया, लेकिन सरस्वती जी इस मतलब को ले रही है बालिशम का, क्या मतलब लेती है कि इंद्र जो है भगवान के अंदर जो ये सरलता की गुण है, क्योंकि बालक के अंदर सरलता की गुण होता है, उस गुण का गुणगान कर रही है। और दूसरा है वाचलम, मतलब ये बालक जो है बड़बड़ बोलता रहता है, इनका कुछ काम धंधा नहीं, उसका कुछ आधार नहीं है, वाचलम मतलब बहुत बोलने वाला। लेकिन ये वाचलम का दूसरा मतलब है, सारस्वत अर्थ है, सरस्वती ले रही है, वाचलम मतलब जितने भी वचा है जितने भी वचस है जितने भी बातें हैं अस्तित्व में, सारे जितने भी बातें सारे जितने भी शब्द का मूल केंद्र कृष्ण का गुणगान करना है, सरस्वती उस प्रकार ले रही है। और अज्ञम ये शब्द का मतलब है इंद्र ले रहा है कि ये जानता नहीं है कुछ भी नहीं जानता है, अज्ञम ये ऐसा सोच रहा है, इंद्र सोच रहा है कि ये कृष्ण को कोई जानता नहीं है, सॉरी कृष्ण कुछ जानता नहीं है, इस भाव से इंद्र कह रहे हैं अज्ञम। लेकिन सरस्वती इसी बात को लेकर कह रही है कि अज्ञम मतलब कृष्ण वो व्यक्ति है जिनको जानना बहुत मुश्किल है, या सारा जगत देवता जितने भी असुर वो भी जानते नहीं उनको, तो इस प्रकार वो अर्थ लेती है। और स्तब्धम मतलब ये बहुत अकड़ू व्यक्ति है, इतना बालक होने पर भी वो ही इज वेरी स्टबन बोलते हैं ना इसको, बहुत जिद्दी है करके वो इंद्र सब अर्थ ले रही है। लेकिन सरस्वती कह रहे हैं कि ये जो शब्दम का मतलब है वो इतना शक्तिशाली है कि वो जो भी कहते हैं वो सत्य के रूप में होगा ही करके, तो वैसे आचार्य करते हैं। और पंडित मानिनम इसके ऊपर थोड़ा सा कह के मागे जाएंगे, तो ये इतना बालक होने पर भी बड़ा बड़ा कुछ भी तोतली भाषा बोलता है, लेकिन अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। कृष्ण बड़ा कर्म मीमांसा सिद्धांत को सुना रहा है करके इंद्र ये शब्द ये बात को कह रहे पंडित मानिनम, पंडित मानना अपने आप को पंडित मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन सरस्वती इसी बात को ले रही है, पंडित मानिनम मतलब जितने भी पंडित लोग है वो सब लोग कृष्ण को मानते हैं पंडित मानिनम। तो ऐसा होने के बाद इंद्र ने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना होगा, उनको सारे व्रजवासियों को कुछ शिक्षा देना होगा करके उन्होंने क्या किया, संवर्तक बादल को बुलाया। जब संवर्तक बादल आया तो ऐसा जोर से बारिश गिरने लगा, ऐसा वर्णन आता है कि वो पिलर्स एक बड़े खंभ जैसे इतना मोटे मोटे उनके धाराएं थी बारिश का। जो बारिश ऐसा गिरने लगा कि सारे जितने भी व्रजवासी है उनको और कोई रक्षा तो है नहीं करने वाला, तो कृष्ण के पास आके प्रार्थना करने के, अभी आप रक्षा करो। तो कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करो। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपनी बाएं हाथ की, बाएं हाथ है ना लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से उन्होंने उठाया, गोवर्धन को उठाया। ऐसा बोला जाता है जैसे कृष्ण ने गोवर्धन को स्पर्श किया, गोवर्धन इतना भावविभोर हो गया कि अपना जो शरीर को विस्तार करने लगा, क्योंकि 9 लाख गायें एक नंद महाराज के पास है। ऐसे बोला जाए अरबों बछड़े हैं, इतने सारे गोपवृंद गोपवृंद सभी लोग को शरण देना था, इससे गोवर्धन का विस्तार इतना हुआ सारा ब्रजवासी सभी लोग वो गोवर्धन के नीचे आके खड़े हो गए। जैसे वो खड़े हो गए तो बारिश जो है गोवर्धन के ऊपर गिर रहा था। लेकिन ऐसा आचार्य कहते हैं कि भगवान जो है अपना जो चक्र है सुदर्शन जो है वो गोवर्धन के ऊपर घूमने लगा, तो सुदर्शन चक्र का तेज इतना था कि जैसे बारिश गिरता था गोवर्धन के ऊपर भी बारिश नहीं गिरता था, तो बारिश जो है नीचे कहीं और गिरता था। और ये सुदर्शन चक्र के प्रभाव की वजह से वो जो बारिश गिरता था वो पानी भी वो एवोपरेट होकर बाहर निकल जाता था, इसलिए उनको जरा पता भी नहीं लगा कि असली इतना बारिश भी गिरता तो पूरा जो व्रज है डूब जाता। वो डूबा नहीं, ऐसा कुछ पता ही नहीं, ऐसे बारिश गिरा करके सब खत्म होने के बाद 7 दिन 7 रात तक भगवान इस प्रकार खड़े उठा के रखे। तो इधर सबसे पहला पहली बार कृष्ण ये जो जितने भी गोपियां राधा रानी और जितने भी ग्वाल बाल सभी उनका सान्निध्य को प्राप्त किए। तो ये आचार्य कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने भी कुछ परीक्षा करने के लिए सोचे। ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को उठा के लेके गए, उठाने के बाद ब्रह्मा जी बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा प्रार्थना किए। इतना प्रार्थना करने के बाद भी भगवान अस्तित्व में प्रसन्न नहीं हुए ब्रह्मा जी से, ठीक है प्रार्थना हो गया चलो ऐसा भावना रखे। लेकिन जब इंद्र ने क्या सोचा कि व्रजवासियों को मैं मार दूं वध कर दूं, ये सोचने पर भी भगवान ने इंद्र के ऊपर विशेष कृपा किया और साथ साथ में इंद्र से बहुत प्रसन्न थे। एक तो ब्रह्मा से इतना प्रसन्न नहीं थे, ब्रह्मा का अपराध इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इंद्र का अपराध बड़ा था, घोर अपराध था। क्यों? क्योंकि वो मारना चाहते थे व्रजवासियों को। इतना घोर अपराध होने पर भी कृष्ण प्रसन्न थे इंद्र से। क्यों? क्योंकि इंद्र की वजह से सारे व्रजवासियां कृष्ण के साथ में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। जितने भी सारे गोपियां सारे जितने भी व्रजवासियां सब लोग कृष्ण के नजदीक में आए। 7 दिन 7 रात तक उन सब लोगों को कृष्ण का दर्शन करने का मौका मिला और कृष्ण को सारे अपने भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए भले ही वो व्रजवासियों को वह मारना चाहता था इंद्र, लेकिन कृष्ण इंद्र से प्रसन्न थे कि तुम्हारे वजह से सभी 7 दिन 7 रात तक मुझे सारे गोपियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, वैसे तो संभव नहीं था, तो ये 7 दिन 7 रात तक हमको ये प्राप्त हुआ। तो इंद्र ये बात को देख के उन्होंने सोचा कि ये तो अद्भुत सा कार्य है भगवान श्री कृष्ण ने किया, ये तो सच में भगवान है, करके वो उनका अहंकार नष्ट हो गया और संवर्तक बादल को वापस बुला लिए। तो और कृष्ण के पास जब गए इंद्र माफी मांगने के लिए, उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पूछेंगे कि नहीं मालूम नहीं। तो इंद्र जानते थे कि अगर कृष्ण मैं एक गाय का सहारा लेके जाऊंगा, कृष्ण को गाय बहुत पसंद है, गाय का माध्यम बना के जाऊंगा तो मैं मुझे स्वीकार करेंगे। जैसे सूरी भाई सुरभि गाय को साथ में लेके गए इंद्र, तो उधर ऐरावत के द्वारा उन्होंने गोविंद कुंड से कृष्ण को अभिषेक किया और गाय सामने थी इसलिए कृष्ण ने इंद्र के ऊपर गुस्सा प्रकट नहीं किया, तो इंद्र ने प्रणाम भी किया, ये सब कुछ किया, इंद्र का दमन को अहंकार को बंद किया। तो इंद्र का अहंकार किसके वजह से उत्पन्न हुआ, एक देवता होने की अहंकार उत्पन्न हुआ, देवता की वजह से अहंकार जो होता है वो अहंकार से उत्पन्न हुआ। ये लीला का श्रवण करने के द्वारा भक्तों में एक प्रकार का अनर्थ होता है, डेमीगॉड वर्शिप, कि मैं इतने साल से ये देवता को पूजते आ रहा हूं, तो मुझे अगर मैं कृष्ण को ही पूजूंगा, उनको थोड़ा सा पूजा नहीं करूंगा तो क्या मानेंगे देवता। तो इस प्रकार की जो डेमीगॉड वर्शिप है, देवता देवता आराधना करके आसक्ति है, वो जो अनर्थ है उसको नाश करेंगे भगवान श्री कृष्ण ये लीला का श्रवण करने के द्वारा। ये लीला के द्वारा भगवान बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उपदेश या मिलते हैं उनसे। सबसे पहला उपदेश यह है कि देवताओं को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है भक्तों को। दूसरी बात यह है कि ये इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा ऐसी देवताओं के तुलना में व्रजवासियों का श्रेष्ठता, व्रजवासियों का श्रेष्ठता। और तीसरी बात यह है कि भगवान ये जितने भी देवता है वो उनके भगवान के भक्ति है। इस प्रकार इंद्र के अंदर अहंकार को दमन करने की लीला, इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा भगवान उन देवताओं को जो उनके भक्त है अपनी लीला में स्थान देते हैं। ही गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेमीगॉड्स टू टेक पार्ट इन दिस। जब तक कृष्ण का लीलाओं का श्रवण होता रहेगा इस ब्रह्मांड में, तब तक इंद्र का नाम भी आता रहेगा। तो ये और अगली बात, अगली चीज ये है, अगर अपराध अगर हो जाता है, अपराध होने के बाद अगर कोई भक्त का शरण ग्रहण करता है कोई व्यक्ति, तो कृष्ण उस अपराध को माफ करेंगे। जैसे इंद्र ने क्या किया, सुरभि गाय को साथ में लेके गए, क्योंकि उन्होंने गाय को वध करना चाहता था, सारे व्रजवासियों की गायों को वध मारना चाहते थे इंद्र, व्रजवासियों को मारना चाहते। इतना अपराध करने के बाद भी कृष्ण ये सुरभि, कृष्ण ने देखा इंद्र जो है सुरभि गाय का सहारा लेते हुए आ रहे, तो इसलिए कृष्ण ने ये इंद्र के अपराध को माफ किया। और साथ साथ में कृष्ण किस प्रकार हमारे हृदय में जो अहंकार है, अलग अलग चीजों की वजह से उत्पन्न हुआ अहंकार है, उसको वध करते, जैसे इंद्र का जो अहंकार, इंद्रत्व का जो अहंकार है उसको उन्होंने वध किया। तो व्यक्ति के अंदर एक भावना रहता है हमेशा, मैं कंट्रोलर हूं, आई एम द कंट्रोलर, मैं जैसे चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा चाहता था ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह से व्यक्ति को गुस्सा भी आता है। खासकर भक्तों को इस प्रकार की भावना नहीं रखना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे प्लान और योजना बना सकता है, लेकिन अगर उनकी योजना, उनकी प्लान और उनकी इच्छा के अनुसार हुआ नहीं है, तो भक्त को सोचना चाहिए ये भगवान की इच्छा है, दैवेच्छा है। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर जबरदस्ती बैठ के नहीं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा ऊपर नीचे कूदने लग जाता है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर इंद्रत्व है अभी भी, आई वॉन्ट टू बी द कंट्रोलर। भले ही कोई भी किसी व्यक्ति पोस्ट में भी क्यों ना हो, वो ये समझना चाहिए कि अस्तित्व में दास हूं, मैं इधर एक सेवक हूं, अध्यक्ष हो, कमांडर हो या कोई भी पदवी में हो, ये पोस्ट अस्तित्व में एक गौड़ीय वैष्णव अभिधान में हम पढ़ रहे थे कि उधर व्यक्ति को पदवी अपराधों की वजह से मिलता है, और ये पदवी जो पोस्ट है ये भक्ति में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि आप जाओगे, आप अगर पोस्ट में हो तो लोग बोलेंगे हाँ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट है ये, अरे आप तो कमांडर साहब है, आप ये है डॉक्टर, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ये सब जो पोस्ट है इसके वजह से लोग सम्मान देते हैं, और ये सम्मान भक्ति में सबसे बड़ा घातक है। वो सम्मान जब मिलता है वो व्यक्ति सोचने लग जाता है कि मैं भगवान बन गया हूं, आई एम द कंट्रोलर। ये पोस्ट अपराध की वजह से मिलता है, और भक्ति में जो व्यक्ति अपराध करता है उसको व्यक्ति पोस्ट मिलता है। तो इसलिए जब पोस्ट मिलता है अस्तित्व में खुश होना ये बड़ा मूर्खता है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए, जब व्यक्ति को किसी भी कारण से मिल जाता है, कृपा है या कोई भी अपराध है जिसकी वजह से भी जो भी मिल गया, तो उस समय यह सोचना चाहिए कि इंद्र का जिस प्रकार हालत हुआ उसी प्रकार हमारा भी होगा। एक बार हम एक मंदिर में गए थे, उधर एक उधर के अध्यक्ष ही समझ लीजिए वाके ये बताने लगे कि इधर जितने भी भक्त है मेरा मेरा बात ही नहीं सुनते। तो मैंने कहा भगवान का एक बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बड़ी कृपा है, क्योंकि ये समझा रहे कि हम कंट्रोलर नहीं है, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। जितना व्यक्ति ऊंचा पदवी में है उनको ये बात को निश्चित रूप में अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम केवल इधर सेवक है, वी आर सर्वेंट, आई एम सर्विंग इन द पर्टिकुलर पोस्ट। एक जगह हमारे गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि शुरुआत में जब ज्वाइन किया था तो मैंने पूछा उनसे कि महाराज इस्कॉन में कुछ ही लोग गुरु क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि सम पीपल हैव गॉट द सर्विस ऑफ बीइंग ए गुरु, कुछ लोगों को गुरु बनने का सेवा मिला है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति कोई पदवी को प्राप्त करता है संस्था में, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनको वो पदवी के अंतर्गत उस प्रकार की सेवा प्राप्त हुआ है, दैट सर्विस हैज टू बी अंडरस्टूड, नहीं तो इंद्रत्व आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो इंद्रत्व जो है हमको नाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के अंदर जब इंद्रत्व आता है तुरंत ऐसी माहौल बना देते हैं जिसके द्वारा हर चीज उनकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, तब समझ लेना चाहिए कि मैं इंद्र नहीं हूं, आई एम नॉट इंद्र, आई एम नॉट पोजिशन। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड एंड जस्ट गिव अप दिस प्राइड दैट आई एम समबडी, आई एम द कंट्रोलर, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, हम कंट्रोलर नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम कौन है, हम दास है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई चीज ऐसा होता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, आपने योजना बनाए विरुद्ध होता है, तुरंत दैवेच्छा, ये भगवान की इच्छा से हुआ। ये संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो बचपन में हमको दिखाई पड़ता था। कुछ भी होता था घर में घटना, हमारी दादी ये बात को बार बार बोलती थी, दैवेच्छा, दैव मतलब भगवान, उनकी इच्छा है, ये बार बार इस बात को बोलती थी। हमको समझ में नहीं आता क्या है, जब हमने भगवद गीता वगैरह पढ़ा तब समझ में आया कि ये संस्कृति में कितना महत्ता है कि कुछ भी होता था जो होना नहीं चाहिए था ऐसा हो गया तो तुरंत बोलेंगे दैवेच्छा, यानी भगवान की इच्छा, नहीं तो तुरंत अपने आप को रखेंगे, अरे ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा सोचा था, मन तुरंत कलुषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, सोचेंगे इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, इसने ऐसा हुआ, मैं इस पे हूं, मुझे बात सुनता नहीं, मैं हूं, तो इस प्रकार इंद्रत्व आता है, हमारा मन को प्रदूषित करता है। इसलिए सारे भक्तों को ये भगवान कंट्रोलर है, कृष्ण इज अ कंट्रोलर, ये बात को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं को, जिम्मेदारियों की सेवाओं को स्वीकार करना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। हरे कृष्ण। It is due to his modes, and Krishna is giving a particular nature to him to be him such people. Ultimately, Krishna is a controller, whether through modes or directly. सीधे तरीके से हो, उल्टे तरीके से हो, अल्टीमेट हु इज द कंट्रोलर, कृष्ण इज द कंट्रोलर। वन डिवोटी आस्क्ड मी, एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी आई बिकेम ए डिवोटी, इज कृष्णा गिविंग मी एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई कर्मा और ही इज डायरेक्टली गिविंग मी एवरीथिंग? तुमने कहा कि वेदर ही इज गिविंग थ्रू योर कर्मा बिकॉज ऑफ योर कर्मा और ही इज गिविंग यू डायरेक्टली, अल्टीमेटली ही इज गिविंग यू। No, Krishna has to directly give me. Directly deal with me. Whether it deals with the modes, deals with, he is dealing. Ultimately, he is a controller. ये बात हमको समझनी चाहिए. He is a controller. आपको ये famous कहानी मालूम है ना? एक बार एक एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने क्या किया, वो कुत्ता को बहुत मारा। तो कुत्ता आया राजा के पास कंप्लेन करते हुए, आके कंप्लेन किया। तो राजा ने पूछा ब्राह्मण को, कुत्ते को क्यों मारा, तुम्हारा गलती है तो उनको सजा देना चाहिए। ठीक है, राजा ने सोचा कि मैं उनको सजा देता हूं, तो सजा देने से पहले पूछ लेता हूं कुत्ते को संतुष्ट करने के लिए। पूछा कुत्ते से कि तुमको क्या सजा चाहते हो ब्राह्मण को। तो कुत्ता ने कहा राजा को, आप उसको मठ का महंत बना दीजिएगा। तो राजा तो घबरा गया, अरे ये तो अपराध किया है, आप ऐसा सजा क्यों देना चाहते हैं, तो सजा नहीं है तो पोस्ट का उन्नति हो गया, वो तो साधारण सा इधर उधर ब्राह्मण है, मठ का महंत बनना मतलब तो बड़ी बात होता है। तो कुत्ता ने कहा क्यों, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था पहले पिछले जन्म में, और मैं सोचा कि मैं मठ का महंत बन गया हूं, अभी सब मेरे अंडर में है और ये सब जितना भी है मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और जो वैसे जो मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा करते हुए अपने पूरा जीवन यापन किया, इतना अपराध किया, उसकी वजह से मुझे ये जीवन लेना पड़ा। तो ब्राह्मण को भी ऐसे मौका देना चाहता हूं, अगला जन्म में वो भी कुत्ता बने और कोई और आके मारे उनको। पोस्ट बड़ी भयानक चीज है। साधारण सा भक्त है, अगर मान लीजिए कोई चौकीदार है कहीं का, वो गलती करता है, उसको ज्यादा कुछ ज्यादा सजा नहीं मिलता है। लगा उसका कोई बड़ा पोस्ट में है, कोई मिलिट्री में है, जैसे जवान है वो गलती करता है तो उसको क्या सजा मिलता है, ठीक है तुम जाओ ऐसे खड़े रहो या पुशअप मारो, ऐसा कुछ सजा मिलता है। लेकिन अगर कोई कमांडर गलती करता है उसको सब सबके सामने लेके आया जाएगा, उनको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, उनको उनको इंसल्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनका हालत खराब करके रख देंगे वही गलती के लिए, वही गलती के लिए। तो ये बड़ी दुविधा है, इससे बच के रहो। अरे हाँ, स्मरण नहीं रहता, यही तो माया है। आ ही जाता है, यही तो माया है, यही तो माया है, क्योंकि टाइम पे भूल जाते हैं। करण ने भी ऐसे टाइम पे भूल गया सब अपराध की वजह से, ऐसे अपराध की वजह से हम टाइम पे भूल जाते हैं सब चीजें। तो जैसे हनुमान को एक वरदान मिला था क्योंकि उन्होंने शरणागत लिया था, भले उनके पास बहुत सारा बल था, लेकिन जब टाइम आया तो याद दिलाने वाले लोग थे उनके पास, जाम्बवान था, याद दिलाया हनुमान को अपनी शक्ति क्या है। तो वैसे है जो हम जानते हैं उस चीज को याद दिलाने वाले के साथ रहना चाहिए, वो है भक्त। इसलिए भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। जैसे आपने क्लास में आया है तो आपको याद आया नहीं तो ऐसे जीते, आपको मालूम है, ऐसा किसको मालूम नहीं है, सब कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्णा सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है, लेकिन याद दिलाने वाला चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो याद दिलाए बार बार। ठीक है, इनका प्रश्न यह है कि इंद्र का कर्म है कि अपना ये देना। तो इधर ये बात को ध्यान में जाना चाहिए कि भगवान उधर वो सही सिद्धांत के द्वारा नंदमार को समझा नहीं रहे, कर्म मीमांसा सिद्धांत के द्वारा समझा रहे। ये कर्म मीमांसा जो है सही सिद्धांत नहीं है, इट इज नॉट, लेकिन भगवान एक कर्म मीमांसा का सहारा से ही नंद महाराज को समझा रहे। He is using कर्म मीमांसा टू डिफीट नंद महाराज, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये जो एब्सोल्यूट सिद्धांत है जो भगवान बता रहे वो कर्म मीमांसा सहारा। जैसे ऐसा बोला व्यास देव भी ऐसे करते हैं, जैसे छह प्रकार के सिद्धांत है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये छह प्रकार के सिद्धांतों में व्यास देव ये जब न्याय वैशेषिक को हराना होता है वो कहते हैं कि जब सांख्य के सिद्धांत के द्वारा न्याय वैशेषिक को हरा दिया गया है मुझे अलग से उनको हराने की जरूरत नहीं है। यह नहीं कि वो सांख्य सिद्धांत को स्वीकार करे। व्यासदेव क्या कर रहे हो? वो कह रहे कि जब सांख्य के लोग ही जब न्याय पेशेष को हरा दिए तो मुझे सेपरेटली उनको हराने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे इसका मतलब यह नहीं कि सांख्य सही है, तो वैसे भगवान क्या कर रहे हैं, ये नंद महाराज का ये जो उपासना है, इनका पूजा करने की विधि है, उनको हराने के लिए वेदांत की जरूरत नहीं है, कर्मीमांस काफी है। ये नहीं कि कर्मीमांस सही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। ये प्रश्न जेन्युइन उठता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, हर जगह जहां इस शिला को वर्णन कहते हैं, बुद्धिमान भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। उपसंहार, कंक्लूजन उनका ही रहता है। हाँ, आचार्यस, प्रीवियस आचार्यस मीन्स दे केम फ्रॉम गोलोक वृंदावन धाम ओनली एंड दे वेंट बैक डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। अभी का वर्तमान, इवन दे विल गो बैक होम बैक टू गार्डेड वाया टेकिंग बर्थ इन द वूम्ब ऑफ ए गोपी इन अनदर ब्रह्मांड समवेयर इन पास्ट। एक्चुअली दैट इज एज गुड एज गोइंग बैक होम बैक टू गॉडेड टेकिंग पार्ट इन कृष्णास पास्ट टाइम्स वेर एवर, but first in this material world wherever Krishna is doing pastime, that is where this jiva takes birth in the womb of a gopi and takes part in Krishna's pastime. That is more than going back home back to Godhead. But why it happens? Because when you take birth in the womb of a gopi, you will get the necessary training to serve Krishna in the mood of a gopi. We are actually qualifying ourselves so that we can take in the Raja, in Rajadham. That is what we are doing. We are just qualifying ourselves how to take birth in the Rajadham, in the womb of a gopi.
And who is a gopi and
who is a Rajvasi? Yeah, gopis are Rajvasis. Like, now, who is a devotee and who is a resident of the temple? Devotees reside in the temple, ghosts don't reside. In Raja, there are gopis and there are gopas. That is what you see, whatever you go to Raja, you will find them.
There are so many Rajvasis there, and when we meet them,
They only talk about Krishna when you meet them. They only talk about Krishna.
There's so many Rajvasis.
Yeah, so many. What you see is only 1/1,000,000,000 of the number of Rajvasis who are existing in Vrindavan. There are many Rajvasis in Vrindavan who are not visible to you. If you are doing that, very wonderful. If you are very cautious and everybody is Vajvasi, you should be very wonderful. Actually, you can enter the dham only through the mercy of the Vajvasis. So that is how you should enter the dham, by paying obeisance to the Vajvasis. Achha. Even he may say anything. Wherever he goes, he carries Vrindavan because he is born there. He is a Vrajavasi. Immediately as soon as he is a Vrajavasi, he should play Shastang Pranam. Immediately. He may talk about a film song. But still, you have to pay your obeisances to him. That is the only way. They are Krishna's, Niji Janas. They may be anybody. Krishna's own people. Yeah, they are speciality. Brajavasis are very special. No way. Those who are born in Vraja, they are called Vrajavasis. Yeah, somebody may have shifted to Vrindavan and taken birth there, he is a Vrajavasi. Yeah? Yeah, pay obeisances to him.